ॐ नमश्चण्डिकायै अथ तृतीयोऽध्यायः अथ ध्यानम् ॐ उदयदभानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतीम् वरम् हस्ताब्जैर्धतीम् त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बध्यमाशुरत्मुक्तां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। श्री दुर्गा सप्तशती के इस तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। ओम ऋषि उवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चुक्षरः कोपाद्ययो योद्मथाम्बिकां स देवी शरवर्षेण बवर्ष समरे असुरः यथा मेरुगृहे श्रृंगं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लील्यैव शरोत्करान् जघान तुर्गान बाणैर यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेर्च धुना सद्यो ध्वजं तात्समुच्छ्रितं विव्याद चैत्रगात्रेषु छिन्धन्वान्वाशुगैः सच्छिन्धन्वाविरथो हताश्चो हत्सारथिः अभ्यधावत्तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरा सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल निपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुण लोचनः विक्षेप्य ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाजुल्यमानं तेजो भी रवि बिंबं इमांबरात्। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बेंध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में उठा लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठे। दिष्ट्वा तदापत शूलम देवी झूलम ममुंचत तच्छूलम शत्था तेन नीतम सच महासुरा हते तस्मिन महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढ़श्चामर स्त्री दशार्दना सो अपि शक्ति ममोचात देव्यास्ताम्बिकादुतम् ओंकाराभेताम् भूमौ पात्यामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दिष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चाम्रः शूलम् बाणैस्तदपि साच्छिन्नत्। ततः सिंहासमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारणः। युद्धयामानो ततौस्तुतु तस्मान्नागान्महीगतौ युयुधाते अतिसंरब्धौ प्रहारैरति दारुणैः। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकृमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारेण करप्रहारेण शिरः चाम्रस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्यः शिला वृक्षाद् विरहितः दंत मुष्टिस्थलश्चैव करालश्च निपातितः। देवी क्रुद्धा गदा पातैश चूर्णयामास चोधतम् वाष्कलम् भिन्दी पालेन बाणैस्ताम्रम् तथांधकम् उग्रास्य मुग्रवीरम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्राज त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी। विडालस्याशिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चौभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्गर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया, तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला, भिंदी पाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान गणान कांशिचतुंड प्रहारेण कुरक्षेपैश तथापरान लांगूलतांडितांश्चान्याश श्रृंगाभ्याम च विदारितान वेगेन कांश्चित परान नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेन अन्यान पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकम् अभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततो अम्बिकः सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्महीतलः श्रृंगाभ्यां पर्वतान् चाञ्चिक्षेण च ननाद च वेग भ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य वशीरियत् लांगूले नाहतश्चाभि प्लावयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ के चोट से, किन्हीं को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्राक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा, तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धुत श्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम युयुर्धनः श्वासानिलास्तः शत्शो निपेतुर नभसो अचलः इति क्रोध समाधमात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सचंडिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षि वित्त्वा तस्य वै पाशं तंबवन्द महासुरं तत्याज माहिषम रूपम स्वपी बद्धो महामृधे तथा सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर् दर्शयत् तत् एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेद सायकैः तम् खड्ग चरमणा सार्धम् तथा सो अनभून् महागजः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षजगर्जच कर्षितस्तु करम् देवी खड्गेन निरकृन्तत् ततो महासुरो भूयो माहिषम् वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम् सचराचरम्। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गए। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तथा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानम उत्तमम पपौ पुनः पुनश्चैव जहा सारुण लोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बल वीर्यमदोधतः विषाणाभ्याम च चिक्षेप चंडिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम्। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देव्योवाच गरज गरज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते यत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से वहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि रुवाच हे मुक्ता समुत्पत्य सा अरूढ़ा तुम महासुरम पादेन आक्रम्य कंठे च शूले नयन मताड्यत तथा सोऽपि पदा आक्रान तस्तया निज मुखातता अर्ध निष्क्रांत एवासीद देवया वीरेण संवृता। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अर्ध निष्क्रांतेवासौ युद्धमानौ महासुरा तया महासिना देव्या श्रीच्छित्वा निपातिता ततो हाहा कृतम सर्वम दैत्य सन्नम ननाशत प्रहर्षम च परम जगसुः सकला देवतागणः तुष्टुवुस्ताम सुराम देवीम सह दिव्यैर महर्षिभि जगुर्गन्धर्वपत्यो नन्दितुश्चाप्सरोगणः। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयो अध्याय। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा, तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै अथ चतुर्थो अध्याय अथ ध्यानम्। ओम कालाभ्राभाम कटाक्षैररिकुलभेदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करैरुद्भन्ति त्रिनेत्राम सिंहस्कन्धाधिरूढाम त्रिभुवनमखिलम तेजसा पूरयन्तीम ध्याये दुर्गाम जयाख्याम त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धिकामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करे। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथ में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषि रुवाच शक्राद्यः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बलेच देव्यः ताम तुष्टवुः प्रणति निमृशरोधरांसा वागभि प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहः देव्या यया तत्मिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम्बिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतासं विदधातु शुभानिसानः यस्यः प्रभावम अतुलम भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्चिनाहि वक्तुमलं बलंच सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मना कृद्ध्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुल जनप्रभवस्य लज्जां ताम त्वाम नता संपरिपालय देवी विश्वम। ऋषि कहते हैं अत्यंत प्राक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दृढ़ता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किम वर्णयाम तप रूप मचिंत में तत् किं चाति वीरम सुरक्षये कारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि त्वाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिर्व्यापार सर्वाश्राखिलमिदं जगदंश भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्याति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुरुच्चार्यसे त्वमत्येव जनैः स्वधाश या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तमस्तदोषैर् विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सो विमलर्गजुषां निधानम् उद्गीत रम्य पाद पार्श्वतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाये वारत्ता च सर्व जगतां परमार्थिहंत्री। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोष के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रय यानी तीनों वेद और भगवती यानी छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। मेधासी देवी विदिताक्ष शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्भव सागर नौर संगह श्री कैटभारी हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिक प्रतिष्ठा ईशत सहासम मलम परिपूर्ण चंद्रा बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहृत मातुरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषा सुरेण दिष्ट्वा तु देवी कुप्तम भ्रगुटी करालम उद्यत शशांक सदृश छवि अन्य सद्या प्राणान मुमोच महिषस्तदैव चित्रम कैर्जीव्यते ही कुप्तांताक दर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाये सद्यो विनाशयसी कोवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेदन अनीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसिना च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्याद्रिता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तये स्मिता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्द्रिचित्ता एविर्हितैर् जगदुपैति सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युम अधिगम्य दिव्यं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनहंसि देवी दिष्ट्वा किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् रेषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि शस्त्रपूता इत्थं सतिर्भवति तेष्वपि तेत्साध्वी खड़क प्रभा निक्र विस्फोरणैस्तथोग्रैहि शूलाग्र कांति निभेन्द्रिशो असुराणाम यन्नागताम विलय मनसो मदेन्दु खंडम योग्याननम तब विलोकयताम तदेतत। हे देवी, आप ही की कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाव की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्वृत्त वृत्तशमनम तव देवी शीलम रूपम तथैव चिंत्यम तुल्य मन्यैहि वीर्यम च हंत्री हृदय प्राक्रमाणाम वैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वेत्थम केनोपमा भवतु तेस्य प्राक्रमस्य रूपम च शत्रुभय कारित्यहारि कुत्र चित्ते कृपा समनिष्ठा अतिदिष्टा त्यैव देवी वर्दे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्य मेतदखलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगुणाभयमप्यास्तम् असमाकम उन्मद सुरारि भवम नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वने न पाहि चाप ज्ञानी स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नातम शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानाम यानि रूपाणि तैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षांस्मास तथा भवम खड़गशूल गदादीनी यानी चास्त्राणी ते अंबके करपल्लव संगीनी तैरस्मान रक्ष सर्वतः। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे मातः, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, हे अंबिके खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि रुवाच एवं स्तुता स्वैर दिव्यैहि कुसुमैर नंदनोद्भवैहि अर्चिता जगताम धात्री तथा गंधानुलेपनैहि भक्त्या समस्तै स्त्री दिशैर दिव्यै धूपैर स्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देव्योवाच ब्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मोत्तो अभिवांछितम। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवाउचु भगवत्या कृतम सर्वम न किंचद शिष्यते यद्यम निहतः शत्रुस्माकं महिषासुरः यदि चापं वरो देयस् त्वयास्मकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मृत्यास्त्वैवेर्भिस्त्वां स्तोष्यत्वं मलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर् धनदारादि संपदां वृद्धे अस्मत् प्रसन्नां त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट से बचावें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि रोवाच इति प्रसादिता देवै जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली भूवान तरहिता नृप इत्येतत् कथितं भूप संभूता स यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुण्यश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभ्यौ रक्षणाय च लोकानां देवा नाम उपकारिणी तच्छिणिष्व महाख्यातम यथावत कथयामिते ह्रीम ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतीर्नाम चतुर्थो अध्याय। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।
ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ पञ्चमो अध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीयुत्रचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवतः अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जैर्धतीं धनान्तविलसच्छीं तांशुतुल्यप्रभावम् गौरीदेशमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुभादि दैत्यार्दिनी। पांचवें अध्याय के प्रारंभ में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, अध्याय के अंत तक इन्हीं का विवरण है। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्य का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूं। ओम कलीम ऋषि रुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च हृता मद्बलाश्रियात् तावेव सूर्यताम तद्वद् अधिकारम तथैवरम कौबेर्मथ्याम्यम च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम च चक्रतुर्वहनि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः अपराजितः हृताधिकारस्त्री दशास्ताभ्याम सर्वे निराकृतः महासुराभ्याम ताम देवीं संसमृत्य पराजिताम् त्यासमाकं वरो दत्तो यथा अपत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिर्देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्ठुः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके राज्य भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से त्रिस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः समताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपेण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्षम्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारेण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु चेतने विधीयते।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या
भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः।
चित्तरूपेण या कृत्स्नम् एतद् व्याप्यस्थिता जगत्।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संस्यात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरी श्री शुभानि भद्राणभिहन्तु चाप्दः। या साम्प्रतम् चोधत् दैत्यतापितैरस्माभिरीशाच सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तदक्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनिम्रमूर्तिभिः।
आइए अब पीछे किए हुए पाठ का हिंदी अनुवाद सुने। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैरृति यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शरवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा यानी दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा यानी सभी की सारभूता, सर्वकारणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को हमारा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार फिर नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार तथा उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार पुनः नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार पुनः नमस्कार शत शत नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार फिर नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान हैं, उनको नमस्कार पुनः नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार हमारा नमस्कार शत शत प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार तथा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार पुनः नमस्कार अथवा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार फिर नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार पुनः नमस्कार शत शत बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको हमारा नमस्कार नमस्कार तथा अनेकों बार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि रुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम अभ्याययो तो ये जाह्नव्या निपनंदन साब्रवीतान सुरान सुभ्रूर भवदिभिः स्तुवते अत्र कः शरीर को शतश्चास्यः समुद्भूता ब्रवीच्यवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुंभ दैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुंभेन पराजितैः शरीर को शादयत्तस्यः पार्वत्या निसृतांबिकाः कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार सब देवता जब स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहां किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहां एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। तस्यां विनर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रिया ततो अंबिकां परम रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यौ शुंभ निशुंभयौ ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भास्यन्ति हिमाचलम नैव ताद्रिक क्वचिद रूपम दृष्टम केनचिदुत्तमम जायताम काप्यसौ देवी गृह्यताम चा सुरेश्वर स्त्री रत्नमति चारवंगी द्योतयंती दिशस्त्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम भवान दिष्टुमर्हति यानि रत्नानि मण्यो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि सांप्रतम भांति ते गृहे। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए, स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। ऐरावतः समानीतो गजरत्नम पुरंदरात् पारिजात तरुश्चायम तथैव चैश्रवाहया विमानम हंस संयुक्तम एतत्तिष्ठति तेंगणे रत्नभूत मिहानीतम यदासी द्वेधसो अद्भुतम निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किंजलकनीम ददौ चाब्धिर मालाम मलान पंकजाम छत्रम ते वारुणम गेहे कांचन श्रावी तिष्ठति तथायम स्यंदन वरो यः पुरा असीत प्रजापते मृत्योरुत्क्रांतिदानाम शक्तिरीस्त्वया हृतः पाशः सलिराजस्य भ्रातुस्त्व परिग्रहे निशुम्बस्याब्धिजातश्च समस्ता रत्नजात्या वेहनर्रपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्चही श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहां लाया गया है। यहां महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभायमान है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि रुवाच निशम्येति वचः शुम्भा सतदा चंडमुण्डयौ प्रेषयामा सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरं इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनानमं यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभिने सा देवी ताम तथा प्राह शलक्षणम मधुर यागिरा। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहां आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुंभस त्रैलोके परमेश्वरः दूतो अहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागता अव्याहताज्ञा सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिहि स यदः श्रृणिष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाशनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषितः तथैव गजरत्नम् च हित्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोद्मथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैः श्रवस् संज्ञम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरु विक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वैयतः परम ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। उनकी आज्ञा सदा सब देवता लोग एक स्वर से मानते हैं। कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रैलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरतन उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वो सब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मांगते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महाप्राक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि रुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांतः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूतों के यों कहने पर कल्याणमय भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्योवाच सत्यमुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत्क्रियते कथम श्रूयतामल बुद्धि त्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभो अत्र निशुंभो वा महासुरा माम जित्वा कि त्रेणात्र पाणिम गृहणातु मे लघु। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहां पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूतवाच अब लिप्तासी मैवम त्वम देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोके कहा पुमांस तिष्ठे अग्रे शुंभ निशुंभयौ अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्यः सकला देवास तस्थुर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथां तेषां स्त्री प्रास्यसि सन्मुखं सा त्वं गच्छ म्यैवोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयौ केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देव्योवाच एवमेतत् बलिशुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमाद्रितः तदा चक्षाव सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। ओम। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना। ओम। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंत्रे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय।